जब भी हम जेनेसिस या उत्पत्ति की किताब के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एक प्राचीन बगीचा, कोई बात करने वाला सांप, या फिर शायद बहुत सारे अजीबोगरीब पुराने नियमों की एक लिस्ट।
हाँ, आमतौर पर छवि तो यही बनती है।
बिल्कुल, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि जिन लोगों ने सबसे पहले इस ग्रंथ को पढ़ा था ना, वो इसे किसी इतिहास की किताब की तरह बिल्कुल नहीं देखते थे। मतलब उनके लिए ये कोई पुरानी कहानी नहीं थी।
तो फिर उनके लिए क्या था?
उनके लिए ये एक तरह का सर्वाइवल मैप था, एक ऐसा नक्शा जो ये बताता था कि मानव इतिहास आखिर किस दिशा में जा रहा है, इसका अंत क्या होने वाला है।
इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है।
और ये नजरिया, अगर हम इस नजरिए से देखें तो इस पूरी किताब को समझने का तरीका ही बदल जाता है। हम अक्सर इन प्राचीन किताबों को बस एक, वो क्या कहते हैं, एक ऐतिहासिक दस्तावेज मान लेते हैं जो सिर्फ अतीत की बात करते हैं।
सही कहा, और इसीलिए आज हम डॉक्टर केनेथ मैथ्यूज के 2024 के व्याख्यान जेनेसिस सेशन 1 इंट्रोडक्शन पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। आज के इस अध्ययन का हमारा उद्देश्य कोई भारी भरकम थियोलॉजिकल शब्दों को रटना नहीं है।
बिल्कुल नहीं,
हमारा मिशन बस ये समझना है कि आखिर क्यों ये प्राचीन ग्रंथ सिर्फ यहूदी या ईसाई धर्मों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के इतिहास, हमारी समस्याओं और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद को समझने का इतना अहम हिस्सा बन गया।
हाँ, और डॉक्टर मैथ्यूज का व्याख्यान इसी बात पर जोर देता है कि ये किताब अतीत से कहीं ज्यादा भविष्य की ओर देखने वाली है।
ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। किसी भी किताब को समझने की सबसे पहली सीढ़ी होती है उसका नाम, तो शुरुआती सी शब्द से करते हैं, जेनेसिस। सुनने में तो ये शब्द काफी ग्रैंड या भव्य लगता है ना?
भव्य तो है, लेकिन मजेदार बात ये है कि ये इसका मूल नाम नहीं है।
अच्छा।
हाँ, जेनेसिस असल में एक ग्रीक शब्द है।
हाँ।
इसका मतलब होता है उत्पत्ति या ओरिजिन्स।
अच्छा।
और ये नाम लिया गया है सेप्टुआजेंट से।
एक मिनट, सेप्टुआजेंट ये वही है ना जो हिब्रू ग्रंथों का ग्रीक अनुवाद था?
बिल्कुल सही, जब हिब्रू से ग्रीक में अनुवाद हुआ तब ये नाम पड़ा।
लेकिन मूल ग्रंथ तो हिब्रू भाषा में लिखा गया था, तो हिब्रू में इसका क्या नाम था? क्या उसका मतलब भी यही था?
हिब्रू में इस किताब का शीर्षक है बेरेशीत, और इसमें कोई बहुत गहरा सोचा समझा शीर्षक नहीं है। बेरेशीत असल में इस किताब का सबसे पहला शब्द है।
अरे वाह, मतलब जो पहला शब्द वही किताब का नाम?
हाँ, प्राचीन काल में ऐसा ही होता था। और बेरेशीत का सीधा सा अर्थ है शुरुआत में।
मतलब सुनने में तो ये बहुत ही आम सा लगता है, जैसे किसी भी बच्चों की कहानी की शुरुआत होती है कि एक समय की बात है।
लेकिन डॉक्टर मैथ्यूज के व्याख्यान में जो नोट्स हमने देखे हैं उसमें कहा गया है कि ये शुरुआत सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है।
बिल्कुल, इसमें एक अंत की धारणा भी छिपी है। इसके लिए उन्होंने एक बड़ा ही तकनीकी शब्द इस्तेमाल किया है, एस्काटोलॉजिकल।
हाँ, एस्काटोलॉजिकल सुनने में थोड़ा डरावना शब्द लगता है।
हाँ, मतलब काफी भारी शब्द है,
लेकिन इसका जो विचार है वो बहुत सहज है। एस्कटोलॉजी का मतलब होता है अंतिम परिणामों का अध्ययन, या फिर ये देखना कि भविष्य किस दिशा में जा रहा है।
समझ रहा हूँ।
तो जब ये ग्रंथ कहता है शुरुआत में, तो ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि दुनिया कैसे बनी, ये एक पूरा ढांचा तैयार कर रहा है जो ये तय करेगा कि ये कहानी आखिरकार कहाँ जाके रुकेगी।
अगर मैं इसे अपने तरीके से विजुअलाइज करूँ तो ये डोमिनोज के खेल जैसा है।
हाँ बिल्कुल,
आपने देखा होगा ना, हजारों छोटे छोटे डोमिनोज एक लाइन में लगे होते हैं।
हाँ बिल्कुल,
तो जब आप उस पहले डोमिनो को उंगली से गिराते हैं तो आप सिर्फ एक शुरुआत नहीं कर रहे होते, उस पहले टुकड़े के गिरने का जो कोण है, उसकी जो गति है, वो उसी पल ये तय कर देती है कि दूसरे कमरे में रखा आखिरी टुकड़ा कैसे गिरेगा।
क्या बात है, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। जेनेसिस का वो पहला डोमिनो यानी जो शुरुआत है, वो ईश्वर, सृष्टि और मनुष्य के बीच के रिश्तों की एक ऐसी जमीन तैयार करता है जो आगे होने वाले सारे मानवीय संघर्षों की दिशा तय कर देता है। और अगर हम स्रोत के अनुसार देखें तो इस पूरे डोमिनो इफेक्ट के पीछे जो मुख्य संदेश है उसे दो शब्दों में समेटा गया है, शुरुआत और आशीर्वाद।
आशीर्वाद? मतलब ये थोड़ा मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है।
अजीब क्यों?
क्योंकि अगर हम आम तौर पर देखें तो पुराने नियम की ईश्वर की छवि बहुत गुस्से वाली मानी जाती है, जो हर बात पे नाराज हो जाते हैं या बाढ़ ले आते हैं। लेकिन स्रोत कह रहा है कि आशीर्वाद शब्द बाइबल की किसी भी अन्य पुस्तक की तुलना में जेनेसिस में सबसे ज्यादा बार आया है।
और यही जो आम धारणा है और जो वास्तविक ग्रंथ है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। ये किताब असल में एक ऐसी शक्ति को दिखाती है जिसकी मूल प्रेरणा मानवता के साथ एक गहरा संबंध बनाना है।
अच्छा,
वो मनुष्यों को आशीर्वाद देना चाहता है, उन्हें बढ़ते हुए देखना चाहता है। जो क्रोध या सजा वाली घटनाएं हैं ना, वो मूल योजना नहीं है।
तो फिर वो क्या है?
वो तो बस मनुष्य द्वारा उस आशीर्वाद की योजना को ठुकराए जाने पर आई प्रतिक्रियाएं हैं।
हाँ, तो चलिए इस आशीर्वाद की योजना को ही थोड़ा टेस्ट करते हैं, क्योंकि इंसान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही खराब रहा है। ईश्वर ने जब भी कुछ अच्छा करना चाहा, इंसानों ने सब गड़बड़ कर दिया। तो फिर ये आशीर्वाद लोगों तक पहुंचा कैसे?
इसी का जवाब हमें श्रोत में मिलता है। शुरुआती जेनेसिस में 3 अलग अलग प्रोग्रामेटिक आशीर्वाद दिए गए हैं।
प्रोग्रामेटिक मतलब जैसे कोई मास्टर प्लान हो।
बिल्कुल, आप इन्हें 3 ब्लूप्रिंट मान सकते हैं। पहला ब्लूप्रिंट हमें बिल्कुल शुरुआत में मिलता है, अदन के बगीचे में, जेनेसिस अध्याय 1:28।
ओहो, ये तो वही मशहूर लाइन है ना, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ।
था, परिवार का बढ़ना था और पृथ्वी का प्रबंधन शामिल था।
मतलब इंसानों को इस दुनिया का मैनेजर या केयरटेकर बनाया गया था।
सही कहा।
लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, आदम और हव्वा ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने बात नहीं मानी तो वो जो सीधा संबंध था वो टूट गया, उन्हें बगीचे से बाहर निकाल दिया गया। तो ये पहला ब्लू प्रिंट तो मतलब एक तरह से कूड़ेदान में चला गया, फेल हो गया।
बिल्कुल, फेल हो गया।
तो यहां मेरा एक सवाल है, अगर इंसान का स्वभाव ही इतना बागी है और पहली योजना इतनी जल्दी फेल हो गई अदन के बगीचे में, तो क्या आगे किसी योजना के सफल होने की कोई गारंटी थी? इंसान तो वही गलतियां दोहराता है ना, इस प्रोजेक्ट को बंद क्यों नहीं कर दिया गया?
यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ईश्वर का संकल्प मनुष्य के विद्रोह से कहीं ज्यादा बड़ा है। स्रोत के अनुसार जब पहली योजना ध्वस्त होती है तभी दूसरी योजना लागू कर दी जाती है।
दूसरी योजना?
हाँ, जेनेसिस 3:15 में जहाँ एक बहुत ही मशहूर भविष्यवाणी की गई है,
वो सांप वाली सजा के समय का।
हाँ, जब सांप को सजा मिल रही थी तो कहा गया कि सांप और स्त्री के वंश के बीच एक युद्ध होगा और एक उद्धारकर्ता आएगा जो सांप का सिर कुचलेगा।
सिर कुचलने का मतलब तो एकदम फाइनल और जानलेवा वार हुआ।
बिल्कुल, लेकिन इसके साथ एक कीमत भी जुड़ी थी। सांप उसकी एड़ी पर वार करेगा, मतलब उद्धारकर्ता को भी पीड़ा सहनी होगी। और ईसाई पाठकों के लिए डॉक्टर मैथ्यूज बताते हैं कि इसे सीधे ईसा मसीह के रूप में देखा जाता है।
मतलब जीत तो मिलेगी लेकिन बलिदान के साथ, तो ये दूसरा प्रोग्राम हो गया। लेकिन कहानी तो इसके बाद भी बहुत खराब होती जाती है ना। केन अपने भाई को मार देता है, बाढ़ आ जाती है, फिर वो बेबीलोन की मीनार जान लोग अपनी ताकत दिखाने लगते हैं।
हाँ, इंसान लगातार फेल हो रहा था और इसीलिए सार्वभौमिक स्तर पर यानी पूरी मानव जाति के साथ सामूहिक रूप से काम करने का जो तरीका था वो विफल हो गया।
तो फिर क्या हुआ?
फिर अध्याय 12 में तीसरी योजना आती है, अब्राहम की योजना। ईश्वर पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ एक व्यक्ति को चुनता है।
एक व्यक्ति मतलब पूरी दुनिया की भीड़ में से सिर्फ एक?
हाँ, अब्राहम को चुना जाता है और उससे 3 वादे किए जाते हैं, एक विशेष भूमि, एक महान राष्ट्र और सबसे बड़ी बात, पृथ्वी के सभी लोगों के लिए आशीर्वाद।
तो मतलब लक्ष्य नहीं बदला, लक्ष्य अभी भी पूरी दुनिया को आशीर्वाद देना ही है।
बस तरीका बदल गया।
एकदम सही, एक पर्टिकुलर या विशेष व्यक्ति के माध्यम से यूनिवर्सल या सार्वभौमिक दुनिया को आशीर्वाद देना।
यहाँ पर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि अगर हम इस पूरी किताब की संरचना को देखें, इसके स्ट्रक्चर को, तो ये मुझे गूगल मैप्स की तरह लगता है।
गूगल मैप्स? वो कैसे?
मतलब जब हम गूगल मैप्स खोलते हैं तो पहले एकदम जूम आउट करके पूरी दुनिया देखते हैं, महाद्वीप, महासागर, सब कुछ। जेनेसिस के पहले 11 अध्याय बिल्कुल ऐसे ही है, एकदम मैक्रो लेवल पर। हाँ, वो सार्वभौमिक परिवार की बात करते हैं, सृष्टि, अदन, बाढ़ और बेबीलोन की मीनार।
बिल्कुल, लेकिन फिर अध्याय 12 से हम अचानक पिंच करके जूम इन कर लेते हैं। हम पूरी दुनिया का नक्शा छोड़कर एक छोटे से परिवार के घर पर फोकस करते हैं। अध्याय 12 से 50 तक बस उसी परिवार की कहानी है।
बहुत अच्छी एनालॉजी है। इस जूम इन वाले हिस्से में हम 4 कुलपतियों की कहानी देखते हैं, अब्राहम, फिर उनके बेटे इसहाक, जो असल में अब्राहम और जैकब के बीच एक संक्रमणकालीन कड़ी है।
एक ब्रिज की तरह।
हाँ, फिर जैकब आते हैं जो 12 जनजातियों के पिता बनते हैं, और अंत में जोसेफ, जिसने अकाल के समय पूरे परिवार को मिस्र में बचाया था।
तो ये तो हो गया कंटेंट या विषय के आधार पर बंटवारा, लेकिन स्रोत में एक और बात थी, इस किताब की औपचारिक संरचना। एक खास हिब्रू शब्द का जिक्र था।
ओ, आप टोलेडोट की बात कर रहे हैं?
हाँ, टोलेडोट। इसका क्या मतलब है?
इसका शाब्दिक अर्थ है ये पीढ़ियां हैं,
या वंशावली। ये शब्द इस किताब में 11 बार इस्तेमाल हुआ है और ये सिर्फ नाम गिनाने के लिए नहीं है।
तो फिर किसके लिए है? आमतौर पर तो वंशावलियां बहुत बोरिंग लगती हैं।
याद है हमने जेनेसिस 3:15 की बात की थी?
हाँ।
वो वादे वाला वंश जो सांप का सिर कुचलेगा।
हाँ, वो उद्धार करता।
ये जो टोलीडोट है ये असल में उसी वंश को ट्रैक कर रहा है। इतने युद्ध, बाढ़ और पारिवारिक धोखों के बीच ये शब्द पाठक को बताता है कि वो वादा अभी भी जिंदा है, वो बीज अगली पीढ़ी तक पहुंच गया है।
अरे वाह, मतलब ये सिर्फ फैमिली ट्री नहीं है, ये उस उद्धारकर्ता की जर्नी को मैप कर रहा है।
बिल्कुल।
अच्छा, अब जरा और जूम आउट करते हैं।
हाँ।
जेनेसिस कोई अपने आप में अकेली किताब तो है नहीं, ये एक बड़े कलेक्शन का पहला हिस्सा है ना?
हाँ, इसे पेंटेट्यूच कहते हैं। ये एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है 5 किताबों का संग्रह, जेनेसिस से लेकर व्यवस्था विवरण यानी ड्यूटेरोनोमी तक।
और हिब्रू में इसे तोड़ा कहते हैं।
सही कहा। और अगर हम इसे बड़े संदर्भ से जोड़कर देखें तो तोरा का अनुवाद अक्सर लोग कानून या लॉ कर देते हैं।
हाँ, कानून सुनते ही दिमाग में वो सजा, नियम और अदालत जैसी बातें आने लगती हैं।
लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि तोरा का सही अर्थ शिक्षण या इंस्ट्रक्शन है। ये प्रभु का मार्ग या जीवन शैली सिखाता है।
और जेनेसिस में तो वैसे भी बहुत ज्यादा कानून नहीं है।
बिल्कुल नहीं। जेनेसिस कहानियों के माध्यम से सिखाता है, जैसे अध्याय 18 में अब्राहम अपने परिवार को न्याय का मार्ग सिखाता है।
तो ये नियम थोपने के बजाय एक दिशा दिखा रहा है।
हाँ, और इसका धर्मशास्त्रीय संदेश बहुत गहरा है। उस समय इजरायली सिनाई पर्वत पर थे, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि उनका ईश्वर कोई आम देवता नहीं है।
आम देवता मतलब?
जैसे आसपास के साम्राज्यों के अपने अपने लोकल भगवान होते थे। बिल्कुल, कोई बारिश का देवता, कोई फसल का। लेकिन जेनेसिस ये सिद्ध करता है कि उनका ईश्वर पूरी सृष्टि का रचयिता है।
आपने ध्यान दिया कि जेनेसिस 1 में ब्रह्मांड को बनाने के लिए ईश्वर क्या करता है?
वो बोलता है।
हाँ, 10 बार लिखा है ईश्वर ने कहा।
और उसी तरह सिनाई पर्वत पर ईश्वर 10 आज्ञाएं देता है, 10 शब्द।
अरे बापरे, ये तो बहुत ही जबरदस्त कनेक्शन है। मतलब जिन 10 शब्दों से दुनिया बनी, वही 10 शब्द अब उनका जीवन जीने का तरीका तय कर रहे हैं।
बिल्कुल, ये उन्हें बताता है कि उनके नियम सीधे ब्रह्मांड के डिजाइन से जुड़े हैं।
लेकिन अब अगर ये सब सिनाई पर्वत पर खड़े इसराइलियों के लिए इतना जरूरी था, तो सवाल ये उठता है कि इसे लिखा किसने और उस समय का माहौल क्या था?
पहले समय काल देखते हैं। कुलपतियों का समय लगभग 2200 BC से 1550 BC के बीच था।
मतलब ये प्रारंभिक से मध्यकाल से युग की बात है।
हाँ, उस समय कनान में कोई बड़े साम्राज्य नहीं थे, बस छोटे छोटे नगर राज्य होते थे। और मूसा का समय इसके काफी बाद का है, लगभग 1450 BC।
तो क्या ये किताब मूसा ने लिखी थी?
तकनीकी रूप से ये किताब अनाम है, इसके लेखक का नाम अंदर नहीं लिखा है। लेकिन यहूदी और ईसाई परंपरा इसे मूसा द्वारा रचित ही मानती है।
लेकिन मूसा तो जेनेसिस की घटनाओं के समय थे ही नहीं, वो तो सदियों बाद आए, तो उन्होंने ये सब कैसे लिखा?
स्रोत के अनुसार मूसा ने शायद उन प्राचीन लिखित अभिलेखों का इस्तेमाल किया होगा जो पीढ़ियों से सहेजे गए थे, जैसे जेनेसिस 5:1 में लिखा है आदम की वंशावली की पुस्तक, और साथ ही उन्हें ईश्वरीय ज्ञान भी प्राप्त हुआ होगा।
लेकिन डॉक्टर मैथ्यूज के व्याख्यान में ये भी जिक्र था ना कि इसमें बाद के संपादकों ने कुछ अपडेट्स किए हैं, जैसे वो जेनेसिस 36 में एदोम के राजाओं वाली बात।
हाँ, वहाँ उन राजाओं का जिक्र है जो इसराइल के राजाओं से बहुत पहले हुए थे, और ये जानकारी शायद दाऊद के समय के आसपास जोड़ी गई होगी। हाल में इन ग्रंथों को एक जीवंत दस्तावेज माना जाता था।
जीवंत दस्तावेज
मतलब लिविंग डॉक्यूमेंट। पाठकों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए पुराने स्थानों के नामों को अपडेट करना या छोटी मोटी जानकारी जोड़ना एक आम बात थी, और इसे बहुत सम्मानजनक माना जाता था। ये कोई छेड़छाड़ नहीं थी।
अच्छा, मतलब ये पाठकों की भलाई के लिए था, ताकि वो कहानी से जुड़े रहें।
बिल्कुल।
तो अगर हम आज के इस पूरे अध्ययन को समेटे, हमने देखा कि कैसे जेनेसिस या बेरेशित महज एक शुरुआत नहीं बल्कि अंत की दिशा तय करता है। कैसे इंसान की गलतियों के बावजूद आशीर्वाद की 3 योजनाएं काम करती रहीं, और कैसे एक विशाल दुनिया की कहानी सिमट कर एक छोटे से परिवार पर आ गई,
और यही परिवार आगे चलकर तोरा यानी जीवन जीने की शिक्षा का आधार बना।
ये जानकारी इसलिए भी इतनी अहम है क्योंकि ये हमें दिखाती है कि प्राचीन संस्कृतियों ने अपनी टूटन को, अपने ब्रोकननेस को कैसे समझा और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कैसे कायम रखी।
सही बात है।
लेकिन जाते जाते एक सवाल है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, और ये थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। अगर जेनेसिस को मूसा के कानूनों को एक संदर्भ देने के लिए एक प्रीक्वल के रूप में संकलित किया गया था, तो जरा सोचिए आज हमारे आधुनिक समाज के जो नैतिक कानून हैं, जो मूल्य हैं, वो आखिर किन कहानियों पर टिके हैं।
ये गहरा सवाल है।
क्या ऐसा तो नहीं कि आज हम जिन चीजों को सही या गलत मानते हैं वो भी हमारे पूर्वजों द्वारा चुनी गई किन्हीं मूल कहानियों या मिथकों द्वारा अनजाने में ही आकार ले रही हैं? क्या हम आज भी आखिरकार उन्हीं पुरानी कहानियों को जी रहे हैं?
इस पर तो श्रोताओं को खुद विचार करना चाहिए।
बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। खैर, ज्ञान की इस खोज को हम ऐसे ही जारी रखेंगे। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे भी बहुत मजा आया, धन्यवाद।